यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था, अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है।
नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दीजापुर डायलॉग्स। पहला फेज कल पूरा हो गया, अभी तक आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं और दूसरा फेज 26 तारीख को है, लेकिन आप ये जानिए कि नरेंद्र मोदी ने 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी आरंभ कर दी। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अभी तक पूरे के पूरे विपक्ष की उम्मीदें जो हैं वो मोदी और योगी के बीच में विवाद उत्पन्न करने पर लगी हुई थी कि किसी प्रकार से दोनों में विवाद हो जाए, किसी प्रकार से लोगों को ये लग जाए कि भाई मोदी जो है वो योगी की छुट्टी करना चाहते हैं, अमित शाह और योगी में बहुत विवाद है और इस प्रकार से यदि योगी जो उनकी लोकप्रियता है उसके सहारे जो खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वो उल्टी पड़ जाए। लेकिन 2027 के लिए तो सर्टिफिकेट दे दिया और 2029 के लिए भी दे दिया। कैसे, कल अमरोहा में एक रैली थी, अमरोहा की रैली में मोदी जी आए थे, योगी जी साथ में थे। अमरोहा सेकंड फेज में पोलिंग करने जा रहा है, सेकंड फेज में अमरोहा के साथ साथ 7 और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पर पोलिंग होगी। तो अब देखिए मोदी जी क्या कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि यूपी के एक सांसद के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि 2014 का और 2019 का रिकॉर्ड योगी जी के नेतृत्व में हम 2024 में तोड़ने जा रहे हैं। सुनिए आप और समझिए इसको, इसके पीछे छुपा हुआ जो संदेश है वो समझिए। 2014 में योगी नेतृत्व में नहीं थे, 2019 में थे। ये भी कहा कि 2019 में तो योगी की सरकार को 2 ही वर्ष हुए थे, अब पूरे उसके बाद 5 वर्ष का और भी समय हो गया और 7 वर्ष में योगी जी ने जो कुछ किया है और गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और विकास के क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी किया है वह सर्वोत्तम है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भूरी भूरी प्रशंसा की मोदी ने योगी जी की, एक प्रकार से ये बता दिया कि जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं ये दिखाने की कि भाई योगी और मोदी में कुछ अंतर है, कुछ अंतर द्वंद्व है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ विवाद है, उनका सबका मुंह एक साथ बंद कर दिया। लेकिन क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि अब मोदी जी जो है वो निश्चिंत हो गए हैं पहले फेज के बाद में कि भैया ये 2024 का तो जो हमने टारगेट रखा था उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 करके सरकार तो अब मोदी 3.0 बनी गई, अब तैयारी करते हैं 2027 की, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार लानी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार लाए बिना केंद्र में सरकार नहीं आती है। इसलिए उसका जो कथानक है वो तैयार कर दी, कथानक के पीछे की पटकथा पूरी बता दी और आगे का कथानक तैयार करके रख दिया। अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं और वो पॉडकास्ट सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ में था, सुशांत सिन्हा उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो गजब कर दिया 2014 की। राजनाथ सिंह ने बताया सुधांशु त्रिवेदी को, सुधांशु त्रिवेदी जी राजनाथ सिंह के बहुत निकट हैं, लखनऊ से ही आते हैं और लखनऊ के ही सांसद हैं राजनाथ सिंह। तो उन्होंने बताया कि भाई 2014 में जब मुश्किल से सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद जब वो लोग बैठे थे तो मोदी जी ने नक्शा खींच दिया। उन्होंने कहा कि भाई 2019 में हमें कहाँ कहाँ विशेष प्रयास करना है, वो यह स्थान है। अर्थात अब 2029 के लिए क्या क्या प्रयास करना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयास यह है कि यूपी को बांध कर रखना है। बिना यूपी को बांध कर रखे, बिना यूपी की 80 सीटों की गारंटी के मोदी की गारंटी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए वो जो 80 सीटों की गारंटी है वो मोदी ने कल अमरोहा में बता दिया कि वो गारंटी जो है वो योगी के माध्यम से आती है। अब ऐसे नेता को अब आप क्या कहेंगे, आप आगे कर भी क्या सकते हैं? आप देखें कि तरह तरह के नैरेटिव चल रहे हैं, दुनिया भर के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। कल से जब से फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई है और उसमें कमी बेशी आई है। मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि पिछली बार भी जो आंकड़े आए थे उनको पूरी तरह अपडेट होने में इलेक्शन कमीशन ने लगभग 48 घंटे का समय लिया था। और आज भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक केवल जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब ये चलेगा तो संभवतः रिकॉर्ड करने के एक घंटे बाद चल जाएगा, तब तक केवल पश्चिम बंगाल के आंकड़े अपडेट हुए हैं। और पश्चिम बंगाल के आंकड़े जो पहले से ही बहुत हाई थे, 80.3% थे, वो बढ़ के 81.9% हो गए। तो इसलिए अभी जो कुछ भी आंकड़े आए हैं उसमें 2-3% का उछाल भी आना बाकी है भाई। तो इसलिए सब लोग शांति रखें और प्रतीक्षा करें पूरी तरह से आंकड़े अपडेट होने की। कल रात 12 बजे से पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त कहीं के भी आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं। प्रश्न अब ये उठता है कि योगी की जो ये प्रशंसा की गई इसके पीछे क्या कारण है? अनायास तो नहीं हो सकती, निश्चित रूप से फीडबैक मिला होगा, निश्चित रूप से बताया गया होगा कि ये पूरी की पूरी जो इंडिया अलायंस है ये तरह तरह की अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रही। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई। इस बार जो है वो सोशल मीडिया अत्यधिक एक्टिव है। अच्छा, इस बार का जो सोशल मीडिया है वो 2014 में देखिए कि सोशल मीडिया का बहुत ही सुंदर उपयोग नरेंद्र मोदी ने किया था। 2019 तक आते आते कांग्रेस ने थोड़ी बहुत ट्रिक्स सीख ली और जो 2014 में सोशल मीडिया की बहुत ज़बरदस्त लीड थी नरेंद्र मोदी की, वो 2019 में थोड़ी कम हुई। लेकिन 2024 आते आते ये खाई जो है लगभग पट चुकी है। बल्कि मैं कहूँगा कि हम नरेंद्र मोदी को अपनी जो पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम है और उसको रिवैम्प करने की आवश्यकता है। कुछ वहाँ पर भी नया ब्लड आए, नए आइडियाज़ आए, नई चीज़ें आएँ, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि प्रचार लगभग पूरी तरह से सोशल मीडिया पर सिमट कर रह गया है। अब तो लोग पर्ची देने भी नहीं जाते, पर्ची देने इसलिए भी नहीं जाते कि इलेक्शन कमीशन ने सिस्टम बदल दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एक BLO नाम की संस्था क्रिएट कर दी है, बूथ लेवल ऑफिसर। उस बूथ लेवल ऑफिसर का उत्तरदायित्व तो दे दिया गया है कि वो बूथ लेवल ऑफिसर जाके सब जगह पर्ची बांटता है। हमारे यहाँ भी पर्ची आई है इस बार, लेकिन पर्ची कौन लाया है? वो बूथ लेवल ऑफिसर BLO वही लेकर आया है, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। दूसरी बात, जो सारे के सारे दूसरी पार्टी के लोग हैं वो पैसा भी नहीं खर्च कर रहे। आज की डेट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं पर आपको बैनर नहीं मिलेंगे, कहीं पोस्टर नहीं मिलेंगे, के कोई होल्डिंग्स इत्यादि मिल जाएंगे, बाकी सबका सब जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया है। अब सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए ये तो मैं कहूँगा कि इस बार जो है बड़ी कुशलतापूर्वक झूठा नैरेटिव फैलाने का सफल प्रयास किया गया इंडिया अलायंस द्वारा, और कई सारे झूठे नैरेटिव फैलाए गए और टारगेट किया गया है, कम्युनिटीज़ को टारगेट किया गया है। जैसे मैं जानता हूँ यहाँ राजस्थान में SC ST में बड़ा झूठा नैरेटिव फैलाया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जो है वो 3.0 में मोदी जी चेंज कर देंगे, क्योंकि मोदी जी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े काम करने वाले हैं, उसमें बड़ा काम यही होने वाला है कि वो संविधान बदल देंगे। ये नैरेटिव फैलाया गया। दूसरा नैरेटिव फैलाया गया राजपूतों वाला, वो सब आप देख ही चुके। इसी तरह के कुछ ना कुछ नैरेटिव जो है वो फैला रहे हैं आपके दक्षिण भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में एक सुनामी आई है अन्नामलाई नाम की, और मुझे लगता है कि अन्नामलाई ने जो कुछ भी वहाँ नेतृत्व दिखाया है उसका जो सोशल मीडिया में जिस तरह से जो झूठ, जो झूठ की मलाई जो द्रविड़ियन के यहाँ परोसी जाती है वो कहीं और नहीं परोसी जाती। अन्नामलाई ने उसको बहुत सफलतापूर्वक टैकल किया है। कैसे किया है इसकी केस स्टडी होनी चाहिए और इसको सभी स्थानों पर लागू किया जाना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि अन्नामलाई निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। वो ट्रेंड जो आ गई है और अन्नामलाई के जीतने के साथ साथ तमिलनाडु के जो वहाँ के आंकड़े आ रहे हैं, विशेषकर चेन्नई के जो आंकड़े आ रहे हैं और चेन्नई की जो ट्रेंड आ रही है, जो कह रहे हैं कि भाई साउथ चेन्नई में 10% वोट बढ़ा है, सेंट्रल चेन्नई में 8% वोट बढ़ा है, तो उसको देख के पूरा का पूरा जो द्रविड़ियन इको सिस्टम है बुरी तरह से पस्त है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन ये बता दूं आपको कि नरेंद्र मोदी ने 2029 की तैयारी आरंभ कर दी है और उसके लिए उन्होंने यह भी इंगित कर दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र 2029 की कैंपेन में होगा वो योगी आदित्यनाथ का ही होगा। हाँ, देखिए उन्होंने आज तक और किसी का नाम इस प्रकार से नहीं लिया जैसा योगी जी का लिया। जो योगी जी को सर्टिफिकेट दिया, ऐसा सर्टिफिकेट अभी तक किसी और मुख्यमंत्री को नहीं दिया। हेमंत विश्व शर्मा को भी इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं दिया। वैसे उनकी प्रशंसा तो की और सराहा है अन्नामलाई को, लेकिन अन्नामलाई अभी मुख्यमंत्री नहीं है, संभवतः हो जाए। तो भाई लोगों, 2024 तो लॉक कर दो और 2027 उत्तर प्रदेश और 2029 भारतीय चुनावों के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।